नमस्कार, भारत तारीख 10 नवंबर दिन शनिवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना का संसद भंग करने का आदेश। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों का कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं विरोध।
हम सभी कार्यकर्ता हैं, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देते जाए।
मांग है कि वहाँ कैंडिडेट हो तो स्थानीय विधानसभा का होना चाहिए।
हम बाहर के लोगों को बाहर भगाना चाहते हैं।
वहीं मध्य प्रदेश चुनावों में बागी उम्मीदवार भाजपा के लिए कितनी बड़ी है चुनौती।
जो वर्तमान स्थिति में यदि देखा जाए, यदि ये ऐसा ही दृश्य रहता है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी।
सुनवाएंगे विवेचना और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संसद भंग करने का आदेश कर दिया है। पिछले महीने राष्ट्रपति सिरिसेना ने पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री बना दिया था, जबकि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया था। सिरिसेना ने देश की संसद को शुक्रवार मध्यरात्रि से भंग करने संबंधी अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका में चल रहे राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बीच ये एक और चौंकाने वाला कदम कहा जा सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के जंगलों में लगी आग की चपेट में आने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें कैलिफोर्निया के बट काउंटी इलाके में हुई, जहां ज़्यादातर इमारतें इस 80 वर्ग किलोमीटर फैली आग की चपेट में आ गईं। आग इतनी भीषण थी कि हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इससे पहले दक्षिण कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में भड़की आग ने भी लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। केपीसीसी रेडियो की रिपोर्टर कैलिक वेल्स ने बताया।
I've spoken with several evacuees. Some of them have been, they were frustrated that they.
मैं इस घटना से प्रभावित बहुत से लोगों से मिली हूँ। जिन लोगों से मैंने बात की, उनमें से बहुत से लोगों में इस बात का गुस्सा है कि उन्हें समय रहते सूचित नहीं किया गया। ऐसे में वो सुरक्षित जगह पर तो आ गए हैं, लेकिन अपने साथ ज़रूरत का सामान नहीं ला सके हैं। जिन सुरक्षित जगहों पर इन लोगों को लाया गया है, वो लगभग भर चुकी हैं। ऐसे में बहुत से लोग अपनी कारों में सोने को मजबूर हैं। सोमालिया की पुलिस का कहना है कि मोगदिशु में हुए 3 बम धमाकों में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। ये तीनों ही धमाके कार में हुए। इस्लामिक चरमपंथी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उनका निशाना सहाफी होटल था, क्योंकि बहुत से सरकारी अधिकारी होटल में मौजूद थे। ये होटल पुलिस मुख्यालय के पास है। इस हमले में होटल के मालिक के मारे जाने की भी खबर है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले बशीर हसन फराह ने बताया। हमने करीब 15 से 20 घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। सबसे पहले हमने उन लोगों पर ध्यान दिया जो घायल थे और जिंदा थे। शुरू में तो मुझे सिर्फ 5 ही मरे हुए लोग दिखे, लेकिन बाद में बताया गया कि 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को कैलिफोर्निया में बॉर्डर लाइन बार एंड ग्रिल रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के दौरान हमलावर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहा था। इस गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि हमलावर ने बाद में खुद को गोली मार ली। खुद को गोली मारने से पहले इयान डेविड लॉन्ग नाम के इस हमलावर ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई पोस्ट शेयर की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इयान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो काफ़ी बोर हो चुका था। गोलीबारी करने के पीछे इयान का क्या मकसद था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ऐसा माना जा रहा है कि इयान मानसिक तौर पर बीमार थे। जिस समय गोलीबारी हुई, उस समय बार में करीब 200 लोग मौजूद थे और कॉलेज की म्यूजिक पार्टी चल रही थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमरीकी अगुवाई वाले गठबंधन द्वारा पूर्वोत्तर सीरिया के हजिन शहर में किए गए हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। सीरियाई मामलों पर नज़र रखने वाले एक मानवाधिकार संस्था का कहना है कि मारे गए लोग इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के रिश्तेदार थे। हालांकि अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को देश में शरण मिलेगी जो अमरीका की आधिकारिक सीमाओं से आए हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। श्रीलंका में गहराते राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संसद भंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि शुक्रवार आधी रात से यह संसद भंग हो जाएगी। साथ ही इसमें अगले संसदीय चुनावों की तारीख भी तय कर दी गई है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं स्टूडियो में मौजूद हमारी सहयोगी भूमिका राय।
जी शाहिद, श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संसद भंग करने के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी हो चुकी है जो शुक्रवार मध्यरात्रि से ही लागू हो गई है। इस अधिसूचना में घोषणा की गई है कि 5 जनवरी 2019 को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद 17 जनवरी को संसद का गठन किया जाएगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बावजूद इसके सिरिसेना का यह कदम चौंकाने वाला है क्योंकि श्रीलंका पहले से ही राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। सिरिसेना ने ही अक्टूबर महीने की 26 तारीख को रानिल विक्रमासिंघे को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करके पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री बना दिया था और 14 नवंबर तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया था। इस बीच महिंदा राजपक्षे की पार्टी जो थी वो बहुमत जुटाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन तमिल नेशनल अलायंस, तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस और सिलोन मुस्लिम कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि वे महिंदा राजपक्षे की पार्टी को समर्थन नहीं देंगे।
भूमिका क्या रानिल विक्रमासिंघे की ओर से कोई बयान आया है?
शायद विक्रमासिंघे ने अभी तक तो इस संबंध में कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी जो है यूनाइटेड नेशनल पार्टी की ओर से कई तरह के ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के इस कदम को अवैध बताया है और चुनाव आयुक्त से मिलने की बात कही है। पार्टी ने राष्ट्रपति के इस फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ कहा है। जब हमने बीबीसी सिंगला सेवा के आजम अमीन से इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि सिरिसेना और राजपक्षे कैंप जो है वो चाहता है कि जल्दी से चुनाव हो क्योंकि उनके पास संसद में अपनी नई सरकार के लिए बहुमत नहीं है। वहीं यूएनपी इस समय राष्ट्रीय चुनाव के लिए संसदीय मतदान कराना चाहती है। वहीं राजपक्षे ने ट्वीट किया है कि बतौर नेता ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे श्रीलंका के भविष्य पर आम जनता को फैसला करने का अवसर दें क्योंकि आम चुनाव जो हैं वो देश में स्थिरता लेके आएंगे। लेकिन ऐसे में जो हालात दिख रहे हैं उसमें तो ये नहीं लगता है कि श्रीलंका में जो राजनीतिक संकट है वो इतनी जल्दी सुलझता हुआ नजर आ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका राय इन जानकारियों के लिए। रुख करते हैं चुनावी राज्यों का। राजस्थान में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी चयन करने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा में कई स्थानों पर कार्यकर्ता मौजूदा विधायक और मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। इनमें से कुछ कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे और पार्टी दफ्तर पर नारेबाजी की। कांग्रेस में भी टिकट को लेकर लगातार जोर आजमाइश चल रही है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कहीं किसी विधायक का विरोध है तो कोई अपने क्षेत्र के मंत्री से नाराज है। कुछ स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवारों की मांग कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न भागों से आए कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर नारेबाजी की और कुछ मंत्री विधायकों का टिकट काटने की मांग की।
कार्यकर्ताओं का उन्होंने कोई काम नहीं किया था, खुद का निकास भ्रष्टाचार फैलाया था। किसी भी अंतिम पंक्ति कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए लेकिन संघर्ष को नहीं मिले, इस बात सिर्फ हम बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं बिहार में। सर, हम सभी कार्यकर्ता हैं, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे जाए।
मांग है कि वहाँ कैंडिडेट हो तो स्थानीय विधानसभा का होना चाहिए।
हम बाहर के लोगों को बाहर भगाना चाहते हैं और हमारे स्थानीय लोग को लाना है।
बीजेपी नेतृत्व इन कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी का दावा है कि प्रत्याशी चयन में बहुत सावधानी बरती जा रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कहते हैं
कि हमने 12,000 कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके रायशुमारी की। शायद देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जिसने इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके बात। फिर भी यदि कहीं आपस में असंतोष है, एक दूसरे के मन में कहीं मतभेद है, तो हम निश्चित रूप से उसको दूर करने के लिए काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है।
दोनों पार्टियों में टिकट के दावेदार जयपुर और दिल्ली के बीच फेरी लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में उम्मीदवार चयन के लिए शुक्रवार को दिल्ली में नेताओं ने बैठक की है। पार्टी के मुताबिक आज दिल्ली में उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद राज्य कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया से कहा,
क्रमवार तरीके से अलग अलग इसमें अभी तक के जो भी इनपुट आए हैं उन सभी इनपुट के आधार पर और साथ ही साथ में अपोजिशन के हमारे कौन कौन से कैंडिडेट प्रोबेबल हो सकते हैं, इन सब विषय पर चर्चा हुई। ऑफिशियल मीटिंग स्क्रीनिंग कमेटी की हो सकती है, तो उसके बाद में जो हमारी फाइनल जो केंद्रीय समिति की जो मीटिंग है वो हो सकता है कि 12 तारीख को निश्चित हो।
कांग्रेस में भी कुछ चुनाव क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। राज्य में 3 दिन बाद पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन चुनाव में टिकट मांगने वालों की लंबी कतार है। हर दावेदार अपने क्षेत्र की किस्मत बदलने का वादा कर रहा है, क्योंकि अब तक आवाम ने नेताओं की किस्मत बदलते देखा है, शायद इस बार हालात कुछ बदले। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
वहीं दूसरे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भी कमोबेश राजस्थान जैसा हाल है, जहां पर सत्ताधारी भाजपा को प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कई नेताओं ने या तो पाला बदला है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर आए हैं। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
5 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर भाजपा सांसद रहे 78 साल के सरताज सिंह अब होशंगाबाद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सरताज सिंह 2 बार विधानसभा में भी भाजपा के विधायक के तौर पर पहुंचे और केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर वह मंत्री रह चुके हैं। सरताज सिंह अंतिम समय तक भाजपा के टिकट का इंतजार करते रहे। आखिर में जब यह तय हो गया कि उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और पार्टी ने उन्हें फौरन टिकट भी दे दिया।
भाजपा का ये स्टैंड था कि हम नौजवान को आगे लाना चाहते, तो मैंने कहा पहले तय कर लीजिए, एक घोषित कर लीजिए कि भाई 75 साल के बाद या 74 साल या 70 साल के बाद कोई भी व्यक्ति को हम किसी तरह की राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। आपने घोषित तो किया नहीं है। अगर आप मुझ पर ये कहते हैं कि उम्र के हिसाब से हम आपको हटा रहे हैं, तो मैं बहुत से लोगों का आपको नाम गिना सकता हूँ जो मेरी उम्र के हैं, लेकिन आपने उनको टिकट दे दिया।
वहीं प्रदेश के कई स्थानों में भाजपा के खिलाफ उन्हीं के नेता मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी को भी कांग्रेस ने वारासिवनी से टिकट दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा के बागी रमेश सक्सेना भी मैदान में आ गए हैं। रमेश सक्सेना सीहोर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जब वह नामांकन भरने गए तो उनके साथ हजारों लोग थे, इससे भाजपा उम्मीदवार की नींद उड़ गई है। रमेश सक्सेना का कहना है कि पार्टी के साथ की गई वफादारी का कोई नतीजा नहीं मिला।
अपने खर्चे से अपना डीजल पेट्रोल डाल के 80 किलोमीटर दूर से प्रत्येक पोलिंग से जो व्यक्ति आएगा और पार्टी से बगावत करके आएगा, तो आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि कितने दमदारी से साथ बीजेपी छोड़ दिया।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा जो अब तक कैडर बेस्ड पार्टी थी, अब उसमें भी अनुशासनहीनता आ गई है और वह पहले जैसी नहीं रही। यही वजह है कि टिकट नहीं मिलने की वजह से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मैदान में पार्टी के खिलाफ ही आ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता कहते हैं,
जो वर्तमान स्थिति में यदि देखा जाए, यदि ये ऐसा ही दृश्य रहता है, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े पैमाने पर कभी बगावत देखी नहीं गई, तो वो कार्यकर्ता जब उससे रूठ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत कुछ जगह नहीं है, हर जिले में आप देखिए कि एक एक दो कार्यकर्ता जो है ना किसी सीट पर खड़े हुए हैं। इंदौर भोपाल जैसी जगह में भी आप देखिए कि बगावत हो रही है, जहां संगठन का अच्छा दखल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ रही है।
प्रदेश के लगभग हर स्थान से भाजपा के बागियों के खड़े होने की खबरें सामने आ रही हैं। कई लोगों ने टिकट न मिलने की स्थिति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो निर्दलीय के तौर पर ही अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। नामांकन भरने का आखिरी दिन शुक्रवार को था और पार्टी का प्रयास है कि नाम वापसी तक वह इन बागियों को किसी तरह से मनाकर बैठा दे, लेकिन यह पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में भाजपा की तरफ से बागी मैदान में आ गए हैं। अगर यह आखिरी वक्त तक डटे रहते हैं, तो निश्चित ही कुछ अलग परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शुरह नियाजी, BBC न्यूज भोपाल।
BBC इंडिया बोल।
अहमदाबाद शहर का नाम बदलकर कर्णावती करने की तैयारी में है गुजरात सरकार। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयाग और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है। शहरों और जगहों का नाम बदलने वाले सरकारों के इन फैसलों पर क्या है आपकी राय? इस बार BBC इंडिया बोल में यही होगा चर्चा का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 10 नवंबर शनिवार को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
कल यानी 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस महायुद्ध में 10 लाख से भी अधिक भारतीय सैनिकों ने विभिन्न मोर्चों पर ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ी। इनमें से करीब 74,000 सैनिकों ने अपनी जान दी और 67,000 सैनिक घायल हुए। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान को।
छतरी मानस का छतरापण जावे से बस उसके साथ, दूर विदेशी रण भूमि में ईब दिखाओ अपने हाथ।
1914 के शुरू में पंजाब और हरियाणा के गांव-गांव में ये आला सुनाकर आम लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ये लड़ाई भारत में नहीं हो रही थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा का मामूली किसान सिर्फ 15 रुपए महीने के लिए अपना घर बार छोड़कर ब्रिटेन के लिए फ्रांस, ग्रीस, उत्तरी अफ्रीका, फलस्तीन और मेसोपोटामिया के मोर्चे पर लड़ने के लिए गया। जाने माने सैनिक इतिहासकार और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन के सचिव राणा छीना कहते हैं कि इस भर्ती में दक्षिण और पूर्वी भारत से बहुत कम लोगों को लिया गया।
उस जमाने में आपको अगर याद होगा तो एक अंग्रेजों की मार्शल रेसेस थ्योरी थी। उनकी सोच ऐसी थी कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि सिपाही बनने के काबिल हैं, तो उन्हीं को वो जो अपना फौज में भर्ती करते थे। लेकिन इनके साथ साथ इस महायुद्ध के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट इंडियन मिलिट्री लेबर कोर भी भर्ती हुई। 6 लाख के करीब इंडियन लेबर कोर में भर्ती हुए और ये लोग नागालैंड से, मणिपुर से, बहुत जो उस समय के भारत के दूर दूर हिस्सों से आकर वो पहली बारी ना कि उन्होंने भारत के बॉम्बे या दिल्ली जैसे शहरों को देखा, लेकिन यूरोप और इजिप्ट और पूरी दुनिया में जाके उन्होंने एक बहुत ही नया रुख दुनिया का देखा और उसका उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा था। लेबर कोर में आपके बल्कि 10 जेल लेबर कोर भी थे, जिसमें से जेल के कैदियों को उन्होंने भर्ती किया। उन्होंने कहा अगर आप लेबर यूनिट्स के अंदर आप आते हैं तो आपके जो जेल का समय है उसको भी कम किया जाएगा, वगैरह वगैरह।
ये ऐसे लोग थे जिन्हें इस स्तर की लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। ट्रेंचेस की लड़ाई, कीचड़ों की लड़ाई, टैंक, मशीन गन और बेइंतहा ठंड, ये सब उनके लिए बेहद नया अनुभव था। अंग्रेजी पत्रिका वीक की संवाददाता मंदिरा नैयर ने इस विषय पर खासा शोध किया है।
ये जो इंडियन सोल्जर्स हमारे थे, उन्होंने कभी एक मैकेनाइज्ड और इतनी वेल इक्विप्ड आर्मी से कभी फाइट नहीं की थी। पहली बार जब वो गए थे तो उनको तकरीबन 3-4 दिन दिए थे ये नया राइफल यूज टू होने में। और उन्होंने कभी ट्रेंच वॉरफेयर नहीं की थी। ये बहुत सारे बटालियन थे जो माउंटेड बटालियन थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार गैस का उपयोग हुआ था, जर्मन्स ने किया था ईपर में। गैस मास्क हमारे पास नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि एक कपड़े में यूरिन डालकर अगर आपने नोज़ के पास रखें तो उससे आप बच जाएंगे। ऑफकोर्स नहीं बचे। पहली बार इतने इंडियंस बाहर गए थे, पहली बार उन्होंने जहाज़ देखा था, पहली बार उन्होंने रेफ्रिजरेटेड फूड देखा था, पहली बार उन्होंने रिस्ट वॉचेस देखी थी, पहली बार उन्होंने विदेशी औरतें देखी थी। एक स्कैंडल भी था जिसमें एक सिपाही ने एक फ्रेंच वुमन से शादी की थी और उन्होंने अपने घर वालों को लिखा था कि किंग जॉर्ज ने उसको ऑर्डर किया था कि शादी करें।
दिलचस्प बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध में पहले भारतीय की मौत न तो पश्चिमी मोर्चे पर हुई थी और न ही मेसोपोटामिया और अफ्रीका के बीहड़ रेगिस्तान में। भारतीय सैनिकों के युद्ध मोर्चे पर पहुंचने से बहुत पहले ही भारतीय जमीन पर ही कई लोगों ने जर्मनी के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 22 सितंबर 1914 को जर्मन युद्धपोत एसएमएस एमडेन ने चुपके से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर मद्रास बंदरगाह से 2,500 गज दूर लंगर डाला। उस समय मित्र देशों की सेनाओं का कोई भी पोत मद्रास बंदरगाह की निगरानी नहीं कर रहा था। आर के लोशनर अपनी किताब द लास्ट जेंटलमैन ऑफ वॉर द रेडर एक्सप्लॉइट्स ऑफ द क्रूजर एमडेन में लिखते हैं,
रात 9:20 पर पोत के कमांडेंट कार्ल मुलर ने अपने 9 सैनिकों को फायर करने का आदेश दिया। एमडेन से फायर किए गए गोलों ने बर्मा ऑयल कंपनी के टैंकरों में आग लगा दी। उनमें 5,000 टन किरोसिन का तेल भरा हुआ था। उनसे निकलने वाली आग की लपटों को रात में पूरे मद्रास में देखा जा सकता था। मुलर पूरे शहर में दहशत फैलाना चाहते थे। उनके पोत से निकले गोले मद्रास हाईकोर्ट, पोर्ट ट्रस्ट और नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की इमारतों पर गिरे। बंदरगाह पर खड़ा एक व्यापारिक जहाज भी डुबो दिया गया। 5 नाविक मारे गए और 13 घायल हो गए। 30 मिनट तक चले इस हमले में एम्डन ने 130 गोले दागे। जब तक ब्रिटिश सैनिक जवाबी कार्रवाई करते, एम्डन ने मद्रास छोड़ दिया था। जर्मन पोत पर दागे गए 9 गोलों में से एक भी उसे नहीं लगा था। मद्रास पर हुए इस हमले का इतना जबरदस्त असर हुआ था कि तमिल शब्दकोश में एक नया शब्द जुड़ गया था, एम्डन, जिसका अर्थ होता है हिम्मती व्यक्ति जिसका निशाना अचूक होता है।
अंग्रेज इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों को कैनन फॉडर यानी तोपचारी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कई जगह अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। उन्हें कुल मिलाकर 9,200 वीरता पदक मिले, जिनमें 11 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस भी शामिल थे। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों के खिलाफ जर्मनी ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, जो उनके लिए बिल्कुल नया और कटु अनुभव था। मंदिरा नैयर बताती है,
पहली बार जब गैस रिलीज हुई थी, कहते हैं कि एक इंडियन सोल्जर एक चिट्ठी लिखता है वापस, कहता है कि बिल्कुल हेल था, मतलब जहन्नुम था। और बिल्कुल था, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। तो जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, जब लोगों को बस ऐसे गिर जाते थे कि कुछ समझ नहीं आया था, बिल्कुल वैसे ही हुआ होगा। तो कहते हैं कि पूरा फील्ड बस मरे हुए लोगों में, जैसे जैसे मक्खियाँ मरती हैं ना, वैसे ही जस्ट गिर गए लोग। और मीर मस्त ने, बाकी सब बेहोश थे, फिर भी उसने 8 आदमी को तब अपने पीठ में कैरी करके वापस अपने साइड लाया था।
घायल भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन में ब्राइटन में एक राजमहल में रखा गया था। ब्रिटेन के महाराजा ने कई साल पहले इस महल को ब्राइटन कॉरपोरेशन को बेच दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने इन अफवाहों को बढ़ावा दिया कि राजा ने घायल भारतीय सैनिकों के लिए अपना राजमहल खाली कर दिया है।
ब्राइटन में सिर्फ 9 किचन थे, हर मजहब के लिए एक डिफरेंट किचन, 4 लैंग्वेजेस में हर साइन थी, मंदिर था, जाहिर थे, एक गुरुद्वारा था, मस्जिद था। उनको काफी चीजें मिलती थी, उन्होंने शायद रीडेकोरेट भी किया था, जो ग्रैंड हॉल था वहां पर एक्सरे रूम हुआ था। उनके पास एक डॉक्टर भी थे, जो ब्राइटन में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर थे, जिन्होंने इंडिया में सर्व किया था, तो वो उनको समझ आ रही थी कि कैसे करते हैं क्या, तो उन्होंने बहुत सारा केयर किया था। बाकी फिर कहते हैं कि इनकरेज नहीं किया जाता था कि औरतों को, मतलब ब्रिटिश औरतों को नर्सेस बनने के लिए, तो वो ऑफ कोर्स एक रिस्ट्रिक्शन थी। तो ब्रिटिश एम्पायर को अगर प्रोपोगंडा करना था और बताना था कि देखिए हम आपकी कितनी देखभाल कर रहे हैं, हम आप हमारे लिए कितने अजीज हैं, ब्राइटन था वो जगह। और अपेरेंटली हमारे पंजाबी सोल्जर्स काफ़ी रोमांटिक भी थे, और सेंसर बोर्ड ने नोटिस किया है कि उनको काफ़ी लव लेटर्स मिलते थे।
Bless all the sergeants and WO1s. Bless all the corporals and their thinking sons. 'Cause we're saying goodbye to...
इतनी कुर्बानियों के बावजूद इन सैनिकों का इतिहास के पन्नों में मामूली जिक्र ही हुआ है। 6 लंबे सालों तक उन्होंने अंग्रेजों के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया, लेकिन न तो उन्हें इतिहास में जगह मिली और न ही भारतीय लोगों के दिलों में।
मैं समझता हूँ एक ट्रेजेडी है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम यह है कि हमारा उस समय हमारी कोई एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। अगर हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती तो इन सिपाहियों को उनको जो मान मिलना चाहिए था उनकी बहादुरी का, उनके सैक्रिफाइस का, वो ज़रूर मिलता। लेकिन क्योंकि हम एक ग़ुलाम देश थे, हालांकि हमारे राजनीतिक जो नेता उस समय के थे, उन्होंने ये सिपाहियों के बलिदान को एक मोहरा ज़रूर बनाया कि हाँ, हम आपका साथ देंगे, आप हमको राजनीतिक आज़ादी दें। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ उस बात से मुकर गया और हमको वो आज़ादी नहीं मिली, उन सिपाहियों का जो कुर्बानी थी वो व्यर्थ गई। अगर वो हमको मिल जाती पॉलिटिकल फ्रीडम, तो ये लोग हीरोज़ होते, उनको हम आज याद करते। लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ, तो वो ना घर के ना घाट के बीच में ही दबके थे।
लाशों के बाद लाशा, पिता के घर का आया, तन्हा तुझे यहाँ पर मैं कैसे छोड़ जाऊँ। कितनी तपिश है बेटा साया तेरा बनाऊँ।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिखें। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में भूमिका राय हमारे सामने बैठी हैं। जी भूमिका बताएं।
जी शाहिद, चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी सीज़न है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही। तो छत्तीसगढ़ में कल दो दिग्गज नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी थे। जी तो एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों का साथी बोल करके एक बयान दिया, वहीं राहुल गांधी ने उनके इस बयान के अपोजिट एकदम जाकर के बात कही कि मोदी पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, अब नक्सलवाद की बात कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो तब तक चलते रहेंगे जब तक चुनावी माहौल चल रहा है। और इसके अलावा एक खबर है हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान ने छापी है, जो कि आम लोगों से जुड़ी हुई खबर है। सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 2 रुपये महंगा हो गया है, तो इससे सभी के भले ही त्यौहार बीत गए हों लेकिन खाना तो रोज़ पकाना ही है, तो ये 2 रुपये भी काफ़ी मतलब अहम है कि 2 रुपये की कीमत बढ़ा दी गई है। और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर में जो कलह चल रही है अभी तक वो सुलझती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि हर तरीके से उनके बड़े बेटे जो हैं, जो अपनी बीवी को तेज प्रताप जो है उन्हें तलाक दे, अपनी बीवी को तलाक देने की बात कह रहे हैं, और वो अड़े हुए हैं कि मैं तलाक दे करके ही रहूँगा। परिवार ने लाख मनाने की कोशिश कर ली पर वो वहीं हैं। और इसी संबंध में हम जानते हैं कि बिहार में जो छठ पूजा है वो बहुत मायने रखती है, और राबड़ी देवी जो हैं हर साल छठ पूजा करती थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया मैं इस साल छठ पूजा भी नहीं करूँगी। और एक छोटी सी खबर और बता दूँ, अगर आपको याद होगा कि एक मिनी ताजमहल बनाया था, एक 82 साल के एक पोस्टमैन थे, उन्होंने अपनी बीवी की याद में, जिन
पश्चिमी उत्तर प्रदेश
जी, जी जी और उनके उनकी मौत हो गई है, लेकिन अब उन्हें भी अपनी बीवी के साथ ही दफन किया जाएगा। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी
जी। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूमिका राय। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कल से वेस्ट इंडीज में शुरू हुए आईसीसी महिला विश्व 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 34 रन से हराकर अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 195 रनों का भारी भरकम लक्ष्य था, लेकिन वो निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और खुद केवल 51 गेंदों पर 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 103 रनों की शतकीय पारी खेलकर इसे सही भी साबित किया। ये 2020 क्रिकेट में किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा बनाया गया पहला शतक है। मैच समाप्त होने के बाद हरमनप्रीत कौर ने बेहद विनम्रता से कहा कि अभी भी टीम को कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।
एक्साइटेड बट आई थिंक इट्स जस्ट अ बिगनिंग, स्टिल लॉन्ग वे टू गो एंड देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर वी नीड टू इंप्रूव एंड वी विल डेफिनेटली डिस्कस एंड आई थिंक स्टिल एज अ टीम वी नीड टू इंप्रूव अ लॉट।
अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अगला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। उधर चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल पुरुष एकल वर्ग में भारत के के श्रीकांत और महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु की चुनौती क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गई।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सुन लेते हैं मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संसद भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के जंगलों में लगी आग की चपेट में आने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। सोमालिया की पुलिस का कहना है कि मोगादिशु में हुए 3 बम धमाकों में 20 लोग मारे गए हैं, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमरीकी अगुवाई वाले गठबंधन द्वारा पूर्वोत्तर सीरिया के हजिन शहर में किए गए हवाई हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को देश में शरण मिलेगी जो अमरीका की आधिकारिक सीमाओं से आएंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। आज शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में जरूर भाग लें। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।